अध्ययन लेख 42। इस लेख का अध्ययन 22 से 28 दिसंबर के दौरान किया जाएगा। विषय, दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना कीजिए। यह लेख भजन 119 का 145 पर आधारित है, जहां लिखा है, हे यहोवा, मैं पूरे दिल से तुझे पुकारता हूं, मुझे जवाब दे। गीत 44, दुखियारे की प्रार्थना। क्या सीखेंगे? बाइबल में लिखी यहोवा के सेवकों की प्रार्थनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? पैराग्राफ 1 और 2, सवाल क, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें यहोवा के आगे दिल खोलने से रोक सकती हैं? सवाल ख, हम क्यों कह सकते हैं कि यहोवा हमारी प्रार्थनाएं ध्यान से सुनता है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बार बार एक ही तरह की प्रार्थना करते हैं या आपकी प्रार्थनाएं दिल से नहीं होती? अगर हां, तो घबराइए मत, आप ऐसे अकेले इंसान नहीं हैं। आज हम सब भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं और ऐसे में शायद हम प्रार्थना करने में ज्यादा वक्त न बिता पाएं। या ये भी हो सकता है कि किसी वजह से हम खुद को प्रार्थना करने के लायक न समझें और इसलिए हमें दिल खोलकर प्रार्थना करना मुश्किल लगे। बाइबल में बताया है कि यहोवा ये नहीं देखता कि हमारी प्रार्थना कितनी लंबी चौड़ी है, बल्कि वो देखता है कि हम कितने दिल से उससे प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि वो दीनों की बिनती सुनता है। भजन 10:17, यहोवा हमारी बहुत परवाह करता है, इसलिए जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनता है। पैराग्राफ 3, सवाल, इस लेख में हमें किन सवालों के जवाब मिलेंगे? हम शायद सोचें, हम क्यों दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाइबल में लिखी प्रार्थनाओं पर मनन करने से हमें कैसे मदद मिल सकती है? जब हम बहुत परेशान हो और हमें समझ में ना आए कि हम प्रार्थना में क्या कहें, तब हम क्या कर सकते हैं? आइए इन 4 सवालों के जवाब जानें। यहोवा से प्रार्थना करने से हिचकिचाइए मत। पैराग्राफ 4, सवाल, क्या बात याद रखने से हम प्रार्थना करने से हिचकिचाएंगे नहीं? जब हम इस बात को समझते हैं कि यहोवा हमारा एक अच्छा दोस्त है और हमारा भला चाहता है, तो हम उससे प्रार्थना करने से हिचकिचाएंगे नहीं। भजन 119 के लिखने वाले ने भी ऐसा ही किया। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक कई मुश्किलें आईं। कुछ लोगों ने उसके बारे में झूठी बातें कहीं। उससे कुछ गलतियां भी हुईं, जिस वजह से वो निराश हो गया। लेकिन वो यहोवा को अपना दोस्त मानता था, इसलिए उसने उसके आगे अपना दिल खोलकर रख दिया। भजन 119 के 145 में लिखा है, हे यहोवा, मैं पूरे दिल से तुझे पुकारता हूं, मुझे जवाब दे, मैं तेरे नियमों का पालन करूंगा। पैराग्राफ 5, सवाल, जब हम गलती करने पर शर्मिंदा महसूस करते हैं, तब हमें क्यों प्रार्थना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए? उदाहरण दीजिए। यहोवा चाहता है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े पाप किए हैं, वो भी उससे दिल खोलकर प्रार्थना करें। इसलिए हमें यह सोचकर प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि हम कैसे गए गुजरे इंसान हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। एक हवाई जहाज का पायलट जानता है कि जरूरत पड़ने पर वो कभी भी एयरपोर्ट कंट्रोल रूम को फोन कर सकता है और उनसे मदद ले सकता है। मान लीजिए कि उससे कोई गलती हो जाती है या वो रास्ता भटक जाता है, क्या इस वजह से वो मदद लेने से हिचकिचाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हमसे पाप हो जाए या हमें समझ में ना आए कि हम क्या करें, तो हमें कभी यहोवा से प्रार्थना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। दिल खोलकर प्रार्थना करने के लिए क्या करें? पैराग्राफ 6 और 7, सवाल, यहोवा के गुणों पर मनन करने से कैसे हम दिल से प्रार्थना कर पाते हैं? एक उदाहरण दीजिए। जब हम खुलकर यहोवा को बताते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, तो हम यहोवा के और भी करीब आ पाते हैं। तो दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहोवा के गुणों के बारे में गहराई से सोचिए। फुटनोट, वचन जो दिखाया रहा किताब में विषय यहोवा में जाइए और उसमें यहोवा के कुछ खास गुण नाम के शीर्षक में दी जानकारी पढ़िए। फुटनोट समाप्त। जितना ज्यादा हम यहोवा के गुणों के बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा हम उससे दिल खोलकर बात कर पाएंगे। जरा बहन क्रिस्टीन के उदाहरण पर गौर कीजिए, जिनके पिता बहुत गुस्सा करते थे और मारते पीटते थे। वो कहती हैं, यहोवा को अपना पिता मानना और उससे प्रार्थना करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं सोचती थी कि मुझमें इतनी कमियां हैं कि यहोवा मुझसे प्यार नहीं करेगा। किस बात से उन्हें मदद मिली? वो कहती हैं, मैंने यहोवा के अटल प्यार के बारे में सोचा। इससे मुझे यकीन हो गया कि यहोवा मुझसे प्यार करता है। मैं जानती हूं कि यहोवा मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं गिर भी जाऊं या मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो प्यार से मुझे उठा लेगा। अब मेरे लिए यहोवा से बात करना आसान हो गया है। मैं अपना दुख और सुख सब कुछ उसे खुलकर बताती हूं। पैराग्राफ 8 और 9। सवाल, जब हम प्रार्थना करने से पहले सोचते हैं कि हम क्या कहेंगे तो इसके क्या फायदे होते हैं? उदाहरण दीजिए। सोचिए कि आप प्रार्थना में क्या कहेंगे। प्रार्थना करने से पहले आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, जैसे, मैं किन मुश्किलों का सामना कर रहा हूं? क्या ऐसा कोई है जिसे मुझे माफ करना है? क्या कुछ ऐसे हालात खड़े हुए हैं जिसमें मुझे यहोवा की मदद चाहिए? हम उन बातों के बारे में भी सोच सकते हैं जिनके बारे में यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया था। जैसे हम सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के नाम, उसके राज और उसकी मर्जी के बारे में क्या प्रार्थना करेंगे। जरा अलिस्का नाम की बहन के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जब उन्हें पता चला कि उनके पति को एक गंभीर बीमारी ब्रेन कैंसर है और वो ज्यादा समय तक नहीं जिएंगे, तो उन्हें बहुत धक्का लगा। इस वजह से वो प्रार्थना ही नहीं कर पा रही थीं। उन दिनों को याद करते हुए वो कहती हैं, मैं इतनी परेशान थी कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। जब मैं प्रार्थना करने बैठती थी तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या कहूं। फिर बहन ने क्या किया? वो बताती हैं, मैं नहीं चाहती थी कि मैं हमेशा अपने बारे में और अपने पति के बारे में ही प्रार्थना करती रहूं। इसलिए मैं प्रार्थना करने से पहले सोचने लगी कि मैं यहोवा से क्या कहूंगी। इससे मेरा मन शांत हो जाता था और मैं दूसरी बातों के बारे में भी प्रार्थना कर पाती थी। पैराग्राफ 10। सवाल, हमें क्यों समय लेकर इत्मीनान से प्रार्थना करनी चाहिए? समय लेकर इत्मीनान से प्रार्थना कीजिए। छोटी प्रार्थनाएं करने से भी हम यहोवा के करीब आ सकते हैं, लेकिन अगर हम समय लेकर इत्मीनान से प्रार्थना करेंगे तो हम यहोवा को अपने दिल की बात बता पाएंगे। फुटनोट, मंडली की तरफ से जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो अक्सर छोटी होती हैं। फुटनोट समाप्त। बहन अलिस्का के पति इलाइजा कहते हैं, मैं दिन में कई बार यहोवा से बात करता हूं और समय लेकर लंबी प्रार्थनाएं करता हूं। इस वजह से मैं उसके करीब आ पाया हूं। यहोवा कभी जल्दी में नहीं रहता, वो आराम से हमारी सुनता है, इसलिए हम जितनी देर चाहें उससे बात कर सकते हैं। इस भाई की तरह आप क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो कोई ऐसी जगह और समय चुन सकते हैं जब आपका ध्यान न भटके और आप आराम से यहोवा से बात कर सकें। आप चाहें तो ऊंची आवाज में प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते रहें तो इस तरह प्रार्थना करना आपकी आदत बन जाएगी। पैराग्राफ 10 से जुड़ी बाईं तस्वीर में दिखाया गया है कि सुबह होने से पहले एक भाई टेबल पर बैठा मनन कर रहा है। उसके आगे बाइबल खुली हुई है और हाथ में कॉफी का कप है। दाईं तस्वीर में दिखाया गया है कि सुबह होने के बाद भी वो टेबल पर बैठा हुआ है और प्रार्थना में लीन है। चित्र शीर्षक, कोई ऐसी जगह और समय चुनिए जब आपका ध्यान न भटके और आप आराम से यहोवा से बात कर सकें। वफादार सेवकों की प्रार्थनाओं से सीखिए। पैराग्राफ 11। सवाल, बाइबल में लिखी प्रार्थनाओं पर गहराई से सोचने से हम क्या सीख सकते हैं? बाइबल में यहोवा के कई सेवकों की प्रार्थनाएं दर्ज हैं। कुछ प्रार्थनाएं गीत या भजनों के तौर पर लिखी गई हैं। अगर हम इन प्रार्थनाओं को पढ़ें और इनके बारे में गहराई से सोचें तो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम सीख सकते हैं कि हम कैसे दिल खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं और किन मनभावने शब्दों से यहोवा की तारीफ कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं भी मिल सकती हैं जिनके हालात बिल्कुल हमारे जैसे थे। कुछ और जानकारी, क्या आपको भी उनकी तरह लगता है? यहोवा के वफादार सेवकों ने अलग अलग हालात में दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना की। क्या आपने भी कभी उन सेवकों की तरह महसूस किया है? जब याकूब को डर लग रहा था तो उसने यहोवा को अपनी समस्या बताई। उसने यहोवा को यह भी बताया कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो उसका बहुत एहसान मानता है। जब यहोवा ने सुलेमान को राज करने की भारी जिम्मेदारी दी तो वो जवान था और उसे कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए उसने यहोवा से प्रार्थना करके मदद मांगी। बतशेबा के साथ नाजायज संबंध रखने के बाद दाविद को बहुत दुख हुआ। तब उसने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि वो उसके अंदर एक साफ दिल पैदा करे। भजन 51:9-12। जब मरियम को एक खास जिम्मेदारी मिली तब उसने यहोवा की तारीफ की। अध्ययन के लिए विषय: परमेश्वर के एक वफादार सेवक की प्रार्थना पढ़िए, फिर सोचिए उसने यहोवा से क्या कहा और किस तरह उसे अपनी बात बताई, यहोवा ने उसकी प्रार्थना का किस तरह जवाब दिया। इसके बाद उस प्रार्थना पर मनन करके आपने जो सीखा उस पर अमल कीजिए। वापस लेख पर। पैराग्राफ 12। सवाल: बाइबल में लिखी किसी प्रार्थना के बारे में सोचते वक्त आप खुद से कौन से सवाल कर सकते हैं? जब आप बाइबल में लिखी किसी प्रार्थना के बारे में सोचते हैं तो आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं, ये प्रार्थना किसने की, वो किस हालात में था, क्या मैं भी वैसा ही महसूस करता हूं जैसा वो कर रहा था, मैं इस प्रार्थना से क्या सीख सकता हूं। हो सकता है इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थोड़ी खोजबीन करनी पड़े, लेकिन यकीन रखिए आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब आइए यहोवा के 4 सेवकों की प्रार्थनाओं पर गौर करें। पैराग्राफ 13। सवाल: प्रार्थना के बारे में हम हन्ना से क्या सीख सकते हैं? 1 शमूएल 1:10-11 में लिखा है, हन्ना कड़वाहट से भर गई थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और यहोवा से प्रार्थना करने लगी। उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, अगर तू अपनी दासी की हालत पर नजर करे और मुझ पर ध्यान देकर मेरी विनती सुने और अपनी दासी को एक बेटा दे तो हे यहोवा मैं उसे तुझे दूंगी ताकि वो जिंदगी भर तेरी सेवा करे, उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं चलेगा। जब हन्ना ने ये प्रार्थना की तब उसकी जिंदगी में 2 बड़ी मुश्किलें थीं। 1, वो बांझ थी और दूसरी, उसकी सौतन ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। क्या आप भी किसी ऐसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? ध्यान दीजिए ऐसे हालात में हन्ना ने क्या किया, उसने समय लेकर यहोवा को अपने दिल का सारा हाल बताया, तब उसे बहुत राहत मिली। अगर आप भी अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दें, यानी उसे बताएं कि आप पर क्या बीत रही है और आपको कैसा लग रहा है, तो आपको सुकून मिलेगा। भजन 55:22। पैराग्राफ 13 से जुड़ी तस्वीरों में जो बाहर दी तस्वीर भी है, दिखाया गया है कि हन्ना रोते रोते गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही है और महायाजक एली हाथ बांधकर बैठा है और हन्ना को घूर कर देख रहा है। वहां यह भी दिखाया गया है कि हन्ना दुखी होकर एक तरफ देख रही है, वहीं थोड़ी दूर पर एल्काना अपने 2 बच्चों के साथ खेल रहा है और पनिन्ना अपने नन्हे बच्चे को गले से लगाकर मुस्कुरा रही है। चित्र शीर्षक: हन्ना बांझ थी और उसकी सौतन हर वक्त उसे ताने मारती थी। ऐसे में हन्ना ने अपने दिल का सारा हाल यहोवा को बताया। पैराग्राफ 14। सवाल क: हम हन्ना से और क्या सीख सकते हैं? सवाल ख: बाइबल पढ़ने और उस पर मनन करने से हम कैसे अपनी प्रार्थनाओं को और अच्छा बना सकते हैं? कुछ समय बाद हन्ना को एक बेटा हुआ, उसका नाम शमूएल था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो हन्ना उसे महायाजक एली के पास ले गई। फिर उसने दिल से प्रार्थना की और पूरे यकीन के साथ कहा कि यहोवा अपने वफादार सेवकों की हिफाजत करता है और उनका ख्याल रखता है। फुटनोट: हन्ना ने अपनी प्रार्थना में जो बातें कहीं उनमें से कई बातें मूसा की लिखी किताब में भी पाई जाती हैं। इससे पता चलता है कि वो शास्त्र की बातों पर मनन करने के लिए समय निकालती थी। और आगे चलकर यीशु की मां मरियम ने यहोवा की तारीफ में जो शब्द कहे वो हन्ना की प्रार्थना से काफी मिलते जुलते थे। फुटनोट समाप्त। देखा जाए तो हन्ना के घर के हालात पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन उसने अपनी तकलीफों के बारे में सोचने के बजाय अपना ध्यान यहोवा की आशीषों पर लगाए रखा। इससे हम क्या सीखते हैं? शायद आप किसी ऐसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में उस बारे में सोचते रहने के बजाय ये सोचिए कि अब तक यहोवा ने आपको किस तरह संभाला है। पैराग्राफ 15। सवाल: यिर्मयाह की प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं? यिर्मयाह 12:1 में लिखा है, हे यहोवा तू नेक परमेश्वर है, जब मैं अपनी शिकायत तेरे सामने पेश करता हूं, न्याय के मामलों पर तुझसे बात करता हूं, तो तू इंसाफ करता है। दुष्ट अपने काम में क्यों कामयाब होते हैं, दगाबाज क्यों बेखौफ जीते हैं? यिर्मयाह के जमाने में दुष्ट फल फूल रहे थे, ये देखकर वो बहुत निराश हो गया यही नहीं, उसकी अपनी जाति के लोग भी उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यिर्मयाह पर क्या बीती होगी। वो इसलिए कि आज भी हर जगह दुष्ट लोगों का बोलबाला है और लोग हमारा भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सोचिए, बुरे हालात में भी यिर्मयाह ने कभी यहोवा के न्याय पर शक नहीं किया, और जब उसने देखा कि यहोवा ने बगावती इसराइलियों को सजा दी तो उसे पूरा यकीन हो गया कि यहोवा हमेशा न्याय करता है। यिर्मयाह से हम क्या सीख सकते हैं? उसकी तरह हम भी खुलकर यहोवा को बता सकते हैं कि दुनिया में जो नाइंसाफी हो रही है उसे देखकर हमें कितना दुख होता है, और हम ये भरोसा रख सकते हैं कि वक्त आने पर वो हर तरह की नाइंसाफी मिटा देगा। पैराग्राफ 16। सवाल, पंधुआई में रहने वाले लेवी की प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं? भजन 42 का 1-4 में लिखा है, जैसे एक हिरन पानी के लिए तरसता है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए तरसता हूं। मेरा मन परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का प्यासा है। जाने वो दिन कब आएगा जब मैं परमेश्वर के सामने जा पाऊंगा। दिन रात मेरे आंसू ही मेरा खाना है। सारा दिन लोग मुझे ताने मारते हैं, कहां गया तेरा परमेश्वर। मैं ये सब याद करता हूं, अपने दिल की सारी बातें बताता हूं। वो भी क्या दिन थे जब मैं उमड़ती भीड़ के साथ चलता था, उसके आगे आगे पूरी गंभीरता से चलता हुआ परमेश्वर के भवन की तरफ बढ़ता था। हाँ, वो भीड़ जो कदरदानी के गीत गाती हुई, जय जयकार करती हुई त्योहार मनाती थी। ये गीत एक ऐसे लेवी ने लिखा था जो बंधुआई में था। वो अपने लोगों के साथ मिलकर यहोवा की उपासना नहीं कर सकता था। वो कैसा महसूस कर रहा था, हम ये बात इस भजन से समझ सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी की वजह से अपने घर में कैद हैं या अपने विश्वास की वजह से जेल में हैं, तो शायद आप भी इस लेवी की तरह महसूस करें। हो सकता है किसी दिन आप खुश हो तो किसी दिन दुखी हो जाएं। आपको जैसा भी लग रहा हो यहोवा को बताइए, इससे आप अपनी भावनाओं को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, और अपने नजरिए को ठीक कर पाएंगे। जैसे उस लेवी को एहसास हुआ कि वो बंधुआई में रहते हुए भी दूसरे तरीकों से यहोवा की तारीफ कर सकता है, उसने इस बारे में भी सोचा कि यहोवा किस तरह उसका ख्याल रख रहा है। तो जब हम दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना करते हैं, तब हम अपनी भावनाओं को और अच्छी तरह समझ पाते हैं, सही सोच रख पाते हैं, और हमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। पैराग्राफ 16 से जुड़ी बाईं तस्वीर में दिखाया गया है कि एक लेवी वीराने में दिल खोलकर प्रार्थना कर रहा है। दाईं तस्वीर में दिखाया गया है कि अस्पताल में एक भाई अपने बिस्तर पर बैठा प्रार्थना कर रहा है और उसकी गोद में खुली हुई बाइबल है। चित्र शीर्षक, भजन 42 के लिखने वाले ने दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना की। अगर हम भी यहोवा को अपने दिल का सारा हाल बताएं तो हम सही सोच बनाए रख पाएंगे। पैराग्राफ 17। सवाल का, हम भविष्यवक्ता योना की प्रार्थना से क्या सीख सकते हैं? सवाल ख, जब हम मुश्किल हालात में हो तो भजन में लिखी बातों से हमें कैसे हिम्मत मिल सकती है? योना 2:1-2 में लिखा है, फिर योना ने मछली के पेट में अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। उसने कहा, मुसीबत में मैंने यहोवा से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। कब्र की गहराइयों से मैंने मदद के लिए तुझे पुकारा और तूने मेरी आवाज सुन ली। ये प्रार्थना भविष्यवक्ता योना ने उस वक्त की थी जब वो एक बड़ी मछली के पेट में था। उसने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी थी, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि यहोवा उसकी फरियाद सुनेगा। अपनी प्रार्थना में उसने ऐसी कई बातें कहीं जो भजन की किताब से थीं। इससे पता चलता है कि उसे भजन में लिखी वो बातें याद थीं, और जब उसने उन बातों पर गहराई से सोचा तो उसे यकीन हो गया कि यहोवा उसकी मदद करेगा। हम योना से क्या सीख सकते हैं? अगर हम भी बाइबल की कुछ आयतें पहले से याद करें तो मुश्किल हालात आने पर जब हम प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है वो आयतें हमें याद आएं और उनसे हमें हिम्मत मिले। यहोवा से प्रार्थना करके उसके और करीब आइए। पैराग्राफ 18-19। सवाल, रोमियो 8:26-27 में लिखी बात से हमें कैसे दिलासा मिलता है? उदाहरण दीजिए। रोमियो 8:26-27 में लिखा है, इसके अलावा परमेश्वर की पवित्र शक्ति भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करती है। क्योंकि समस्या यह है कि जब हमें प्रार्थना करनी होती है तब हमें समझ नहीं आता कि हम प्रार्थना में क्या कहें, मगर पवित्र शक्ति खुद हमारी दबी हुई आहों के साथ हमारे लिए विनती करती है। और दिलों को जांचने वाला जानता है कि पवित्र शक्ति क्या कहना चाहती है, क्योंकि यह परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक पवित्र जनों की खातिर गिड़गिड़ाकर विनती करती है। कई बार चिंताएं हम पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि हम यहोवा को शब्दों में नहीं बता पाते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, पर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। पवित्र शक्ति हमारी तरफ से यहोवा से विनती करती है। वो कैसे? यहोवा ने अपनी पवित्र शक्ति के जरिए अपने वचन बाइबल में कई प्रार्थनाएं दर्ज करवाई हैं। इसलिए जब हम अपनी बात यहोवा से साफ साफ नहीं कह पाते, तो यहोवा उन प्रार्थनाओं में लिखी बातों को हमारी प्रार्थना मानकर कबूल कर सकता है और उनका जवाब दे सकता है। इस बात से रूस में रहने वाली बहन येलिना को बहुत हिम्मत मिली। उन्हें बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। वो इतने तनाव में आ गई कि प्रार्थना ही नहीं कर पा रही थीं। वो बताती हैं, उस वक्त मुझे याद आया कि ऐसे हालात में यहोवा बाइबल में लिखी अपने सेवकों की प्रार्थनाओं को मेरी प्रार्थना समझकर कबूल करेगा। मैं बता नहीं सकती कि इस बात से मुझे उस मुश्किल वक्त में कितना दिलासा मिला। पैराग्राफ 20। सवाल, जब हम बहुत परेशान होते हैं तब हम प्रार्थना करने के लिए अपना मन कैसे तैयार कर सकते हैं? जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हो सकता है प्रार्थना करते वक्त हमारा ध्यान भटकने लगे। अगर ऐसी बात है तो आप क्या कर सकते हैं? अपने मन को तैयार कीजिए। इसके लिए आप भजन की किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या दाविद की तरह आप भी अपनी भावनाओं को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अपना मन तैयार करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है। जरूरी यह है कि आप अपने मन को तैयार करें। पैराग्राफ 21। सवाल, हम क्यों दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना कर सकते हैं? ये जानकर हमें कितनी तसल्ली मिलती है कि हमारे कुछ कहने से पहले ही यहोवा हमारे दिल का हाल समझ जाता है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसे बताएं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और हमें उस पर कितना भरोसा है। इसलिए कभी भी अपने प्यारे पिता से बात करने से हिचकिचाइए मत। बाइबल में लिखी प्रार्थनाओं पर मनन कीजिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। दिल खोलकर यहोवा से बात कीजिए। अपना सुख दुख सब कुछ उसे बताइए। याद रखिए, यहोवा आपका सबसे अच्छा दोस्त है। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका जवाब क्या होगा? क्या बात याद रखने से आप दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना कर पाएंगे? दिल खोलकर प्रार्थना करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बाइबल में लिखी प्रार्थनाओं पर मनन करने से आप क्या सीख सकते हैं? गीत 45, मेरे मन के विचार, लेख समाप्त।